یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 802
9th of December year 2005 my wife in Aminabad Karachi ماں باپ یہ بیچے ہوئے ہیں یعنی ان کی موجودگی میں. مولانا سلطان محمد شدت فرماتے ہیں کوئی بچہ کوئی برا کام نہیں کرے گا. بزرگوں کی شرم ہوتی ہے, ماں باپ کی شرم ہوتی ہے, سوسائٹی کی شرم ہوتی ہے, اللہ کی بھی شرم ہے. گناہ کرتے وقت ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ شرم ہے, میں گناہ نہ کروں کیونکہ مجھے مولا دیکھ رہا ہے. شرم ایمان کی تہائی ہے, وفاداری تہائی اور. وفاداری کا مطلب کہ اس سے کیے ہوئے وعدے کو میں توڑوں نہ, ہر حالت کے اندر میرا وعدہ میرا پرومس قائم رہے. وفاداری اس کو کہتے ہیں کہ مالک ظاہر میں حاضر نہیں ہے, پھر بھی ہم اپنے مالک کی کوئی ایسی خرابی نہیں کرتے کہ جس سے اس کے اور میرے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ٹوٹ جائیں. مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی ہے, اس نے کسی آدمی کو اپنے دکان پہ آفس میں نوکر رکھا ہے اور اس کو اس بات کی پاور دی ہے کہ وہ کیش پیسے لے لے دے لے, اور اب وہ آدمی یہ دیکھ کے میرا سیٹ جو ہے بہت ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اور اپنے اس رقم کے اندر کچھ تھوڑی سی بد دیانتی کرے, تو یہ وفاداری کے خلاف ہے. ہم نے حضر امام کی بیعت کی ہے, ہم نے حضر امام کی بیعت کی ہے. اے مومنہ, یہ بیعت جو ہے یہ وفاداری کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. بیعت کیا ہے؟ ہم انگلش میں بولتے ہیں irrevocable promise, وہ وعدہ کہ کسی بھی حالت میں ٹوٹے نہ, اس کو ہم کہتے ہیں بیعت. اور ہم نے حضرت امام کی بیعت کرتے وقت اپنے مذہب اپنے طریقے کے حساب سے ہم نے مولا کو کہا ہے کہ یا مولا, میرا تن یعنی میرا جو بدن ہے تیری نوکری میں تیری خدمت میں ہر وقت تیار رہے گا, میرا من میرے خیالات جو کچھ بھی ہیں وہ تیرے فرمان برداری کے درمیان حاضر موجود رہے گا, اور میرا دھن یعنی میری جو کمائی ہے میری ملکت ہے وہ تیرے حضور میں تیار ہے ہر وقت قربان کرنے کے لیے. یعنی ہم نے تین چیزوں کی قربانی کا وعدہ کیا ہے, بدنی قربانی, خیالوں کی قربانی اور اپنے مال کی قربانی. قرآن شریف پڑھو, قرآن شریف پڑھو, جگہ جگہ اللہ اس چیز کو یاد کراتا ہے, واقیم الصلاۃ طرف النہار زلفوں من اللیل, دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور ایک بہت رات گزر جائے اپنی عبادت کو نماز کو دعا کو قائم کر. فرمایا خدا کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, تحقیق جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں برباد کرتی ہیں. نیکی یہ ہے کہ آپ نے بینک میں ڈپوزٹ کیا اور وہاں پہلے سے قرضہ موجود ہے, مگر یہ ڈپوزٹ پڑنے سے وہ قرضہ مٹ جاتا ہے. نیکی اور بدی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ہر اسماعیلی کو جاننا چاہیے. نیکی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, ہم ہر روز مانگتے ہیں تین دفعہ دعائیں نیت خیر, नेकी की नियत की दुआ मांगो। खुदा कहता है कि शैतान से बचो, वो शरीर है, शर करता है। हमारी पुरानी दुआ थी, इस अदरदीन माँ बाप ने लिखी हुई थी, और फिर शाहबुद्दीन शाह ने, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उस बेटे में फर्क किया था। उसमें एक बड़ी अच्छी दुआ थी, वो दुआ मैं रोज मांगा करता। दुआ मांगो नियत खैर जी, कच्ची जबान थी, कंदी कच्ची और सिंधी मिक्स थी। दुआ मांगो नियत खैर जी, इलाही तो खैर करिए, आके बच जो खैर करिए, हित मांद खैर करिए। हित यानी अभी, मांद यानी फ्यूचर में, दिन दुनिया में खैर करिए। अठ पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए। दिन रात के 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का, तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 8 पहर, और हर पहर के अंदर 8 घड़ियां होती हैं। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, तो 24 घंटे के अंदर 64 घड़ियां होती हैं। किस डिटेल के साथ बातें की हैं, वाटे घाटे तेरे बंदों में से वो के जो रास्ते पे चल रहे हैं, घाटे यानी अपने घरों में अपने स्टेशन पे बैठे हैं, वाटे घाटे राह मुसाफरी हैं, वो लोग के जो मुसाफिर हैं दूसरे मुल्क या दूसरे शहर में गए हैं, राहियां दरगाही हैं, ए मौला वो लोग के जो तेरी काम के लिए, जैसे कि दाई और मिशनरी हैं, बाहर दूसरे मुल्कों में घूम रहे हैं, और दरगाही हैं उसको कहते हैं कि जो हाजर इमाम के हुजूर में उसकी ऑफिस में काम काज करते हैं, ये मुखी कमरिया बैठे हैं, ये दरगाही हैं। दाई और मिशनरीज जो है वो राही हैं, पंजे भाई हैं, और वो लोग के जो जमात के अंदर मिलते रहते हैं, तेरी याद में मजलिसें बनाते हैं, इश्कदारियां, जो तेरे से मोहब्बत रखते हैं, कैसी अच्छी दुआ। इश्कदारियां जुमला जमात जो खैर कर रहे हैं, जुमला जमात सारी दुनिया की जमात जो है उसको जुमला जमात कहते हैं, जुमला जमात जो खैर कर रही है, आले नबी औलाद अली जो खैर करते हैं। इमाम के सिवा, इमाम के घर में जो उनके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, वो आले रसूल हैं, उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं। आले नबी औलाद अली जो खैर करी है, याली रखी जालिम के जुल्म करना, ऐ मौला जुल्म करने वालों से हमें बचाना, याली रखी शर शैतान करना, ऐ मौला शैतान के शर से दूर रखना, याली रखी तेरी करना जिन्हें के तुझे समझाना है, जो तुझे नहीं जानते उनको दूर रखना। कैसी अच्छी दुआ है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, याद कर लू। दुआ मांगो नियत खैर, इलाही तू खैर करिए, आकिबत जो खैर करिए, हित मांग खैर करिए, अठ पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाके घाटे राह मुसाफरिए, राहिए दरगाहिए पंजे भांगे इश्कदारिए, जुम्ल जमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, याली रखी सालों जो सुलभ करना, याली रखी शर शैतान करना, याली रखी तिनी करना जिन्हें की तुझी साझा नए। अरे मोमिनो, मजहब जो है वो हमें सिखाता है खैर क्या है, शर क्या है। मजहब क्यों आया दुनिया में, खुदा ताला ने दुनिया बनाने से पहले वजन करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए औरतें खाना पकाती है, थोड़ा सा चमचे में लेके चूस लेती है, उसको टेस्ट करती है कि बराबर है, नमक ज्यादा नहीं, खर्चे ज्यादा नहीं। इस तरह से खुदा ने अपनी मखलूकात को टेस्ट करने के लिए शैतान बनाया, और शैतान बनाया तो हमें इस बात के लिए तलकीन भी की अपने नबियों और अपने रसूलों की मारिफत से। खुदा ताला कहता है कि मेरे कहने और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना, शैतान की बात मत सुनना। ये खुदा ताला का रास्ता जो नबी लेके आए, नबियों ने जो कहा वो खुदा का रास्ता है। ऐ दीनदारों, अल्लाह कहता है ऐसी कोई कौम नहीं है कि जिसमें मैंने अपने गाइड यानी उनको रहनुमाई करने वाले नहीं भेजे, यानी नबी नहीं भेजे, ऐसी कोई कौम नहीं है। हर कौम के अंदर एक हादी होता है, हिदायत करने वाला, कुल कौम में नहा। तो इस तरह से वफादारी जो है वो बहुत जरूरी चीज है। बैठ करके प्रॉमिस दे के तोड़ना ये बेईमानी है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, कभी कभी मैं वाजों के अंदर इस किस्म के वाकयात कहता रहता हूं। रसूल अकरम सुबह की नमाज पढ़ के हुजूर बाहर आए, कुछ लोग सलाम करने लगे, हाथ चूमने लगे, करते करते एक आदमी आकर कहते हैं नबी मुझे आपके साथ सख्त काम है, जरूरी, आप इधर खड़े रहो, मैं दरवाजा खोल के आऊं ताकि बच्चे बाहर निकल सके। हुजूर खड़े थे मस्जिद के सामने खड़े, वो घर गया, दरवाजा खोला तो छोटे बच्चे जागे हुए थे, वो लिपट गए, पांव पकड़ दिए, घर पे बैठा बातें चीतें करते रहा, भूल गया कि रसूल अकरम को रस्ते में छोड़ गया। यूं करते करते बाहर निकला और अपने खेतों पे चला गया। सूरज ऊपर जा रहा है, 10:30 के करीब हो गए। एक आदमी जो सुबह इस बात का शाहिद था वो उधर से निकला तो कहते हैं या नबी आप अभी तक खड़े हैं, और मैं क्या करूं, मैंने वादा किया है। कहते हैं नबी वो तो अपने खेतों पे चला गया, आप हुजूर ठहरो, मैं भी जाता हूं, आपके घोड़े पे बैठा उसके खेतों पे गया। हो गया रसूल अकरम उधर अभी तक तेरा इंतजार कर दिए, वो अपना माथा पीटने लगा कि मेरे से भूल हो गई, भागा भागा आया, पांव पे गिरा, या नबी मुझे माफ कीजिए। दो जहान के इस नूर ने क्या कहा, एक ही चीज की, वादा निभाना ईमान की निशानी है, वादा निभाना ईमान की निशानी है। वो वादा पैसे का होवे, औरत के साथ शादी का होवे, मर्द के साथ शादी का होवे, किसी भी तरीके से अपनी जबान को कभी मत काटो, यानी वादा किया हुआ कभी तोड़ो मत, वो बेईमानी है। वादे के ऊपर तो जाने दे दी गई, सुनो वादा वादा वादा। हजरत उमर का जमाना था खिलाफत का, लड़ाई के दरमियान दो जने लड़ पड़े, एक ने एक को मार डाला। अब या तो किसास ले या खुद फांसी पे जावे, और किसास के लिए रिश्तेदार होते हैं, वो पैसा जमा करके देते हैं। जो गुजर गया था उसके फैमिली वालों ने किसास कबूल नहीं किया, सिर का बदला सिर। खलीफा को कहते हैं मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे 3 दिन की मोहलत दो कि मैं घर जाके जो कुछ भी मेरी विरासत है میں سب وہ بانٹ کے میں واپس آ جاؤں. خلیفہ عمر کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا سوا کہ تو ایسا کوئی ضامن دے رہے کہ تو جو نہ آوے تو تیرے بدلے وہ مرنے کو تیار ہو گئے, تو ایسا ضامن چاہیے. ادھر ادھر دیکھنے لگا, کہتے یا حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے بھول ضرور کی ہے مرنے سے تیار مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے وہ مدد چاہیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. گروپ میں لوگ کھڑے تھے, اس میں سے ایک آدمی باہر آیا, کہتا ہے کہ یا حضرت میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے تو سمجھتے ہیں کیا کر رہا ہے, کہ ہاں یہ اگر نہیں آ گیا تو میں مر جاؤں گا. اچھا اس کو چھوڑ دیا, سپاہیوں کو کہا اس کو پکڑ لو. تیسرا دن ہوا, دوپہر سے پہلے آنے کی بات تھی, آدمی باہر کھڑے ہیں مدینے کے باہر. کوئی آثار نظر نہیں آئے کہ دور سے مٹی اٹی نظر آئے. سورج نیچے جا رہا ہے آہستہ آہستہ, ابھی تک بھی وقت ہے. خلیفہ نے کہا میں مغرب تک راہ دیکھوں گا. مغرب ہوئی وہ نہیں آیا, اور یہ آدمی چپ رہا. این آخری وقت خلیفہ نے کہا اس کو رکھ لو, تیاری کرو. جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا, دور سے مٹی نظر آئی. اس نے کہا چلو. وہ آدمی واپس آیا. جب وہ آدمی واپس آیا ہانپتے ہانپتے, یا حضرت میں معافی چاہتا ہوں, مجھے ذرا سی دیر ہو گئی. اس آدمی کا شکریہ کیا, اس کی جان بچ گئی. خلیفہ نے یہ ہمت دیکھ کے گورنمنٹ کی طرف سے قصاص دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا. میں نے یہ بات اس لیے سنائی کہ ایسے لوگ تھے مدینے کے اندر, علی نبی کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ پرومس کر دیتے زندگی دینے کے لیے تیار تھے. اس چیز کا نام ہے وعدہ. ہم نے اپنے مالک کی, اپنے مولا کی, اپنے امام کی ہم نے بیعت کی ہے. تن من دھن بولتا ہوگی میں, جی تن من دھن گر ارپن کیجئے. کیا ہے بولو؟ ایمان 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 اب تو دھنگ من دھنگ ہم نے اپنے ایمان کے لیے مولا کے قدموں میں رکھا ہے. انسانیت کی جو اعلی منزلیں ہیں ان میں یہ تین چیزیں, شرم ایمان کی تہائی ہے, وفاداری دوسری تہائی, اب کیا ہے سخاوت جو ہے مولا علی فرمایا وہ تیسرا حصہ ہے ایمان کا. سخاوت کا مطلب کیا؟ بھکاریوں کو دینا یہ کوئی سخاوت نہیں ہے. سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے اچھے رستے کے اوپر غریبوں کو یا ان چوگوں کو جن کو مال کی ضرورت ہے ہم دیویں, یہ سخاوت ہے. خیرات اور چیز ہے, سخاوت اور چیز ہے. اللہ فرمایا کہ اپنی کمائی کے پانچ حصے کرو, اور ایک حصہ جو ہے جس کو خمس کہا گیا, خدا نے اسی تخصیص اس طرح سے کی ہے کہ دس حصے, دسواں حصہ عشر میں آتا ہے جس کو ہم دسوند کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا حق ہے جو اس وقت رسول کو دیا جاتا تھا. 2.5% जिसको जकात कहते हैं वो दीन को कायम रखने के लिए है, जकात गरीबों के लिए नहीं है। फकीहों ने और शरीयत के कादियों ने ये बात निकाल ली, जकात गरीबों के लिए नहीं है। जकात लफ्ज जकात का मतलब है पाक करने वाली चीज, जका कहते हैं पाकीज़गी को। 2.5% हर साल अपनी सारी मिल्कत में से देते हैं, दीन के लिए देते हैं, और दीन का मालिक उस जमाने के अंदर रसूल अकरम खुद थे, तो किस तरह उसको खर्च करना, उसमें से उम्माल होते थे, आमिल लोग के जो अलग अलग गांवों में जाके दीन की खिदमत करते थे, वाज करते थे, मजहब सिखाते थे, उनके खर्च के लिए दिया करते थे। अलबत्ता गरीबों के लिए भी हुजूर दिया करते थे, लेकिन बाकी के जो 7.5% है वो हकीकत में दूसरों के लिए है। उसमें के 10% और जकात के 2.5% 12% बनते हैं, जिसको हम लोग दसवंत कहते हैं, आठवां हिस्सा। बाकी के 7.5% जो है अल्लाह कहता है तुम्हारे फैमिली में कोई गरीब है तकलीफ में, उसमें से उसकी मदद कराओ। हर महीने अपनी आमदनी में से 7.5% इस मद के लिए अलग रखो कि फैमिली में कोई तकलीफ वाला है, रिश्तेदारी में कोई तकलीफ वाला है, जमात में कोई तकलीफ वाला है, पड़ोसी में कोई तकलीफ वाला है, अगर कहीं नहीं मिलता तो सारे शहर में कोई भी कौम का आदमी, अगरचे वो काफिर भी है, लेकिन अगर तकलीफ में आ गया तो एक इंसान समझ के इंसानी हैसियत से उसकी मदद करो। ये वो चीज है कि जो 7.5% अल्लाह ने हर मुसलमान के ऊपर लगा रखी है, ये सखावत है। और सखावत करना दौलत को ज्यादा करता है, खैरात सखावत में आती है, लेकिन खैरात का मतलब सखावत नहीं। सखावत में खैरात जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। आपके पास कोई, आपका कोई दोस्त आ गया, रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दोस्त है, और वो कह रहा है कि भाई मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं, लड़का अच्छा है लेकिन मेरे पास जहेज के लिए, खर्च करने के लिए पैसे नहीं। खुदा की कसम, ऐसे आदमी की मदद करो, वो परवरदिगार बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। आपको ऐसा लगा मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, घर में बैठा है, मेरी दवा लेने के पैसे नहीं, आप फौरन पहुंच जाओ, उसकी मदद करो, दवा का बंदोबस्त करो, वो जो अच्छा हो जाएगा तो आपकी रोजी रिजक में बहुत बरकत होगी। आपके दरवाजे को किसी ने नॉक किया, देखा तो एक भिखारी खड़ा है, भाई अमान भूखा हो, पूछो मत, वो कभी पैसे मांगे तो मत दो, बैठ जाएगा। आपके घर में जो कुछ भी हो सकता है, एक दो रोटी कुछ दे दो, उसको खिला दो, उसका पेट भरे या ना भरे, मगर आपने उसके मुंह में रिजक दिया, रिजक वो देता है, आपके हाथ के मालिफत से उसने दिलाया है, वो मौला वो तलाशी हो। ऐसी चीजें हैं मजहब के अंदर जिनको हम भुला बैठे हैं, हम अपने मजहब को अच्छी तरह समझे नहीं। ये वो चीजें हैं दीनदारों के जो आपके दिल में सुकून पैदा करें। अगर शर्म, वफादारी और सखावत, जैसे मौला मुर्तज़ा फरमाया है, इन चीजों को समझ के जो आप अमल करो तो दिन और आखिरत सुधर जाता है।
ईमान में मैं फिर इन चीजों को दोहराना चाहता हूं कि शरण जो है, शरण उसको कहते हैं कि ऐसा काम न किया जाए कि अपने महबूब के सामने शर्मिंदा हो जाए। हमारा सबसे बड़ा महबूब मौलाना शाह करीम आजम खान, ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि हजरत इमाम का नाम बिगड़े। हमें ऐसा काम नहीं करना कि लोग कह रहे आगरा खान के मुरीद ऐसे हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं और अपने मजहब के लिए हम अपनी वफादारी जाहिर करें। वफादारी में जान देना कोई बड़ी चीज नहीं है। वफादारी जो है वो प्रॉमिस के ऊपर होती है और हर कीमत के ऊपर प्रॉमिस पूरा किया जाना चाहिए, हर कीमत के ऊपर। मैंने आपको दो मिसालें दी हैं इस्लाम की तवारीख में से कि रसूल अकरम वादे के ऊपर खड़े रहे और हजरत उमर के जमाने में एक शख्स दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। ये कैरेक्टर की असमत है, ये इखलाक है, ये वो चीजें हैं कि मौलाना हजरत इमाम अपने फरमानों में कहते रहते हैं। एथिक्स ऑफ इस्लाम, एथिक ऑफ इस्लाम के अंदर इस्लाम ने जो हमें इखलाक सिखाए हैं, इखलाक क्या है कि जिसमें खुल्क के लिए यानी खलकत के लिए भलाई होए उसको इखलाक कहते हैं, उसका सिंगुलर खुल्क है, इखलाक जमा है। रसूल अकरम, मैं इखलाक की आपको मिसाल देना चाहता हूं। रसूल अकरम को किसी आदमी ने घर पर बुलाया खाने के लिए, बड़ा सा थाला रखा गया, पांच सात आदमी थे। वो जो घर वाला था उसने अच्छी अच्छी बोटियां पिलो बनाया गया था, अच्छी अच्छी बोटियां रसूल पाक के सामने रखी और थोड़ी थोड़ी सबको दी है। नबी के एन ऑपोजिट में एक शख्स बैठा हुआ था और हम उर्दू में बोलते हैं ना पेटू, पेटू का मतलब बहुत खाने वाला कि जिसका पेट भरे ही नहीं। रसूल अकरम खा भी चल रहे थे, बातें भी कर रहे थे। उसने अपनी बोटियां तो पूरी की क्योंकि उसको थोड़ी मिली थी वैसे भी। इधर उधर देखा, लंबा हाथ करके रसूल अकरम के सामने से एक दो बोटियां खेल पाया। शर्म आई रसूल अकरम को, निगाह निशी करके कहते हैं अरे लोगो, मेजबान ने यानी घर वाले ने जिनके सामने जो चीज रखी है अपनी चीजें खाओ, दूसरों में हाथ मत मारो, ये इखलाक के खिलाफ था। इखलाक ये है कि तुझको जो मिला है वही खाओ। ये बद इखलाकी है कि उसने रसूल अकरम की बोटियां खींच ली। इखलाक नबी का देखो मशहूर चीज है। ये बात मक्का की है, अभी तक हुजूर ने हिजरत नहीं की और थोड़ा ही वक्त हुआ है अपनी नबूवत का इजहार किया है। इसमें यहूदी लोग भड़क उठे। हुजूर की एक आदत थी, अपने घर से मस्जिद को जाते थे मगर मस्जिद में से निकलते वक्त इसी रास्ते से वापस नहीं आते थे, दूसरा रास्ता लेते थे। तो मस्जिद से हुजूर वापस आए, दोपहर की दुआ पढ़ के नमाज पढ़ के ऐन उस वक्त ऊपर पहली मंजिल के ऊपर एक यहूदी औरत, बड़ी उम्र की औरत थी, उसने देखा कि मोहम्मद आ रहा है तो ठहर गई। रसूल अकरम जब उसके छज्जे के नीचे से निकले तो उसने सारा जितना कूड़ा करकट था नबी के ऊपर डाल दिया। सरवर कायनात ऐसा ऊपर करके देखा भी नहीं, चलते रहे हाथों से उसको झटक दिया, चले गए। और नीचे जो यहूदी दुकानदार थे ना, ठीक ठीक करके हंसने लगे। दूसरे दिन नबी इसी तरह से वापस आए और उस औरत ने पहले से तैयारी रखी थी, फिर उसने कूड़ा करकट फेंक दिया, नबी इसी तरह से झटक के चले गए। ये सिलसिला कुछ एक महीने तक चलता रहा, नबी एक लहजा भी ठहरे नहीं, न कभी ऊपर देखा, कुछ कहा नहीं। एक दिन रसूल अकरम ऐसा पास हुए, जानबूझ के आस्ते हो गए कि ये भी कूड़ा फेंके दी, मगर ऊपर से कूड़ा नहीं गिरा, हुजूर ठहर गए। जब ठहर गए और ऐसा ऊपर देखने की कोशिश की तो नीचे दुकानदार कहता है, मोहम्मद वो आज बीमार हो गई है। ऐसा अरबी तमद्दुन में, सिविलाइजेशन में बीमार क्यों पूछने जाना, उसकी तीमारदारी करना या न करना, मगर बीमार पूछी करना एक बहुत बड़ी यानी कि इखलाक की चीज है और उस बीमार के ऊपर एहसान होता है। नबी उसको कहते हैं बीमार हो गई, हाँ तो मैं उसको देख सकता हूं। अब उसको ये चीज गोली की तरह लगी कि मोहम्मद अपने इस दुश्मन औरत को बीमारी में देखना चाहता है। भागा ऊपर, उस औरत को कहा वो मोहम्मद नीचे खड़ा है तेरी बीमार कुर्सी के लिए। पहाड़ टूट गया उसके सिर के ऊपर, रोने लगी, मगर मना नहीं कर सकते अरबी तमद्दुन के हिसाब से, नहीं मुझे देखने बताओ। अच्छा, रसूल अकरम ऊपर गए, ऊपर जब जा रहे तो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खांसने लगे। जब ये निशानी थी कि मैं आया हूं, ये भी एक तहजीब है, किसी के घर जाओ, कम से कम नॉक करो एंटर होने से पहले, थोड़ा खांस लो, मतलब के बे इत्तला किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ये इस्लामी अखलाक में से अखलाक है। हुजूर अंदर गए, वो जमीन पे गिर गई, नबी के पांव पर सिर रखा, रोने लगी, ऐ मोहम्मद तुझे तेरे खुदा की कसम मुझे माफ कर दे। हुजूर ने कहा मैंने तुझे माफ किया, मैं तेरी बीमार कुर्सी में आया हूं, तेरे लिए दुआ करता हूं। उठी, कल मैं शहादत पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी का इखलाक देखा, हुजूर ने नहीं कहा कि तू रोज मेरे ऊपर इस तरह से कूड़ा फेंकती रही, कभी हम हो तो पहले ही दिन गड़बड़ कर डाले। मगर इस्लाम ने हमें इंसानियत सिखाई है जो आज मुसलमानों में नहीं है, बहुत कम है। हम लोग खुद गर्ज हो गए हैं, तकब्बुर वाले बन गए हैं, हमारे अंदर बदियां बुराइयां आ रही हैं, क्योंकि मजहब ने हमारे दिल को अभी तक टच नहीं किया। और अल्लाह ने कहा है ऐ मोहम्मद तू अपने दिल के अंदर आजुर्दा न हो। इन अरबों को कह दे तुम मुसलमान बने हो लेकिन ईमान अभी तक तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ, यह कुरान शरीफ की आयत है। महज कलमा पढ़ लेने से इंसान मुसलमान होता है, मोमन नहीं होता जब तक के अमाल न होवे। और अमाल ऐसे होने चाहिए कि जैसे इमामों ने, नबियों ने, हमारे पीरों ने हमें फरमान किया है। पीर कहते हैं, पीर माँ बाप सदर दिल कहते हैं कि तुम दूसरे का दुख उठा के अगर उसके साथ अच्छा सलूक करो, भूल जाओ कि उसने तुम्हें दुख दिया है। पर दुख दोष खमीर जे जीव गुना मेरा, दूसरे का दुख दोष उठा के उसके साथ गुण करो, उसके एहसान करो, उसकी खिदमत करो। तेनरी दामा है जोत जवेरिया, उसके दिल में हीरे मोती की चमक होगी, ज्योत यानी नूरी, उसका नूरी दीदार होता है। ये नबियों की आदत है कि नबी दुख उठा लेते हैं, एहसान करते हैं। हम इस्माइलियों को यही चीज सिखाई गई, ये चीज शर्म में दाखिल है जिन दर्जों में कह रहा हूं, कि दूसरों के दुख उठा के भी उनका भला करना ये खुदा ताला की शर्म के हिसाब से है। और हम इन बातों के ऊपर अपनी जिंदगी को फैला दे रहे, हो सकता है मोमिनों दीन के रास्ते पर चलने से आप मिलियनर नहीं बनोगे, हो सकता है, बल्कि होता है, ये हो सकता है। अभी आप फैसला करो, दीन पे चलना या मिलियनर बनना, क्या चाहिए। मगर एक बात याद रखो, दीन पे चलने से मिलियनर शायद न भी बने कोई, लेकिन उसके दिल के अंदर हमेशा सुकून और खुशी होगी। किसी से डर नहीं, वाला खौफ वाला ही आजम, न उसके दिल में डर है न उसके दिल में गम है। मैं जमातों में आज 75 साल से वाजे करता हूं दीनदारों, मैं हमेशा जमातों में कहता हूं, आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। वो चीज आपको रूहानियत में काम आएगी और आखिरत में काम आएगी, आपकी औलाद को काम आएगी। उस रिजक में से कि जिस रिजक में से इंसान को बुरे ख्यालात पैदा हो जाएं, उस रिजक में से कि जिस रिजक में से इंसान के दिल में ईमान निकल जाए, उस रिजक से कि जिस रिज्क खाने से इंसान के अंदर रूहानियत बंद हो जाए। इकबाल कहता है ए तायरे लाहूती, तायरे लाहूती रूह है, रूह उसने लाहूती परिंदा कहा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क के खाने से आती हो परवास में कोत आई, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। रूहानियत की उड़ान में, रूहानियत में बढ़ने के लिए जो चीज चाहिए, अगर उसमें खराबी पैदा होती है, ऐसा रिस्क जो है वो कहता है इससे मौत अच्छी, आखिर मरना तो है ही ना। फिर शर्म की बात आती है कि जब अल्लाह के हुजूर में जाएंगे तो किस मुंह को लेकर जाएंगे। अल्लाह कहता है उस दिन कुछ मुंह काले होंगे, कुछ मुंह सफेद होंगे। ये शर्म है कि हम खुदा के हुजूर में जब जाएं तो हमारे मुंह सफेद होंगे, ताकि खुदा ताला राजी हो गए। ऐ मोमिनो, मौत को याद करना इबादत है, लेकिन मौत की दुआ मांगना गुनाह है, समझे। बाज़ दफा कोई बीमार होता है, बहुत दिनों तक बीमार रहता है, फिर कहता है या मौला मेरे को तो मौत दे दे, ये गुनाह है, डूब उठाओ। लेकिन मौत को याद करना इबादत इसलिए है कि उसको ये याद रहता है कि मुझे मौला के पास जाके हिसाब देना है। मौत को याद करो, खुदा से डरो, तो तू दिल वसे रब का नूर, अपने आमाल इस बात के ऊपर रखने चाहिए, शर्म वफादारी और सखावत। सखावत जो बुख्ल है, अरबी में बुख्ल कहते हैं, कंजूसी कहते हैं, सखावत कंजूसी के ऑपोजिट में है। सखी जो होता है वो कभी कंजूस नहीं होता, और कंजूस जो है वो खुदा का दुश्मन है, बकीर अदुल्ला, ये एक मशहूर फिक्रा है और अल्लाह के कलाम में भी ये है कि खुदा जो है वो बकील को पसंद नहीं करता। लेकिन इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा है, इन अल्लाह युहिब्बुल मुसरफीन, अल्लाह जो है फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। फजूल खर्ची और चीज है, बुखल और चीज है, सखावत और चीज है, खैरत और चीज है। हमें अपने मजहब की ये हकीकतें समझनी चाहिए। अरे मोमिनो, ये कोई लाजिम नहीं कि आप पैसा दे के ही खैरात करो। रसूल पाक वाज कर रहे हैं खैरात के ऊपर, जब ये हुजूर बैठ गए तो मशहूर सुहाबी अबू हुरैरा नबी को आके कहता है, या नबी, आपने खैरात के ऊपर वाज फरमाई, आपको मालूम है मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं, लोग मुझे खिलाते हैं तो खा लेता हूं, या नबी मैं कैसे खैरात करूं। हुजूर फरमाया, अबू हुरैरा, खुदा ने तुझे दो हाथ दिए हैं। कहते हाँ या नबी, हाथ उठाओ, हाथ उठाए, दुआ करो, दुआ करना भी खैरात है। किसी को पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए दुआ करो। नीचे गिरे हुए आदमियों के लिए, दुख में पड़े हुए आदमियों के लिए, बीमारों के लिए, दूसरों के लिए दुआ मांगना, इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बहुत बड़ी बात है, ये दीन की खिदमत में आता है। मिशनरियों की मेहमानी थी, 33 या 34 की बात है, हमारे एक मिशनरी थे वजीर जाफर अली भलवानी भंडूल वाला, खड़ा हुआ, जाफर क्या है, कहते खुदावंद लोग जब न्याज पीते हैं तो प्यारी हाथ में लेकर लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, और पीछे की लाइन वाले लोग इंतजार करते हैं, खुदावंद कोई हमें ऐसी दुआ बता कि सब दुआएं उसमें आ जाएं और न्याज जल्दी पिए। हुजूर से जाफर, जब तुम न्याज पीने जाओ, प्याली उठा के कहो, या मौला, हम सबको हकीकत समझ दे, सब कुछ आ गया, दुनिया भी आई, दीन भी आया, तंदुरुस्ती आई, माल दौलत आई, क्योंकि हकीकत की समझ से जब अमल करेंगे उसमें भलाई ही भलाई है। तो हाथ उठा और दूसरों के लिए दुआ मांग, क्योंकि ये भी एक इबादत है, यह खैरात है, और जो सखावत में आता है। इस्लाम के अंदर तो किसी को देख के मुस्कुरा के सलाम करना भी अल्लाह के रसूल कहते हैं, इवन ए स्माइल इज ए चैरिटी, हंस के मिलो ये भी चैरिटी है और खुदा ताला के नजदीक पसंदीदा है। ए मोमिनो, उस चीज को वापस याद करो कि शर्म वफादारी और सखावत ये ईमान की निशानियां हैं। जब ईमान बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जब ईमान बिगड़ता है तो पहली चीज जो बिगड़ती है वो हमारी अक्ल बिगड़ जाती है। जब ईमान पक्का मजबूत होता है तो अक्ल के अंदर नूर पैदा होता है। वो आदमी आदमी की जो बेईमान है उसको हक नहीं दिखता, और बेईमान आदमी को या कमजोर ईमान के अंदर हिर्स पैदा होती है, तकब्बुर पैदा होता है, उसके अंदर वो चीजें पैदा होती हैं कि जो इस्लाम ने मना की हैं। जिंदगी गुजारना मुश्किल है उसके लिए कि उसका ईमान कमजोर है। कभी कभी मुझे खसूसी तौर पर औरतें मिलती हैं, मिशनरी बाबा हम बहुत दुखी आए हैं, भला आप पूरा गुनों किए इसे बोला एक लोगों के दुख दिए तो आशमा खबरदार ये पास मत बोलेगा, तुम छूट गए और जम लग गया मौला के ऊपर कि मौला ने तेरे को ऐसा दुख दिया है, मौला ने दिया। अल्लाह कहता है ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तेरा हाथ नहीं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज के लिए। अरे मोमिनो अपनी जिंदगी को सुखी बनाओ, सुखी बनाने का आज मैं नुस्खा देता हूं। पहली चीज ये है गुस्सा न करो, सुख पाना है पहली चीज ये है कि गुस्सा न करो, पी जाओ, किसी ने बेइज्जती कर दी रिटेलिएट न करो, यानी बदला मत लो, चुप हो जाओ। दूसरी चीज यह है कि अपने आप को बड़ा मत समझो, कभी कभी तो भाई बन लगते हैं ना, आऊ तो क्या सब्जी गिन रो से, आऊ तो क्या ही कर लो से ही कर लो से, अरे भी तू कौन है, अपने मुंह से वो अल्फाज मत भी कर लो कि वो ऊपर वाला नाराज हो जाए, और वो जब थप्पड़ मारता है तो उसकी कोई दवा नहीं। इसलिए डरो, किसी के ऊपर हलवा न करो। तीसरी चीज यह है कि झूठ न बोलो, जो चीज नहीं हुई वो चीज हम कह के हुई, हमारे दिमाग के अंदर लड़ाई होती है, हम जानते हैं कि यह चीज नहीं हुई लेकिन कहने को कह देते हैं हुई, तो हम खुद ही अपने ख्यालों को काट रहे हैं, हम जानते हैं कि हुई है लेकिन दिमाग ने जबान को कहा कि तू कौन नहीं हुई। ये जो इनकार है ना, ये गलत इनकार है, चुप रहना अच्छा है मगर जबान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हमारे दिमाग में डुअलिटी पैदा होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है, और जब कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आ जाता है तो हम फैसला नहीं कर सकते कि ये करूं कि ना करूं। ये उस आदमी को होता है कि जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने से हमारे माइंड में डुअलिटी पैदा होती है, दो चीजें होती हैं, हम जानते हैं कि ये चीज हुई है, मुंह से कहते हैं नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए, ईमान के खिलाफ है। ये कहते हैं एक दिन झूठ जो बोल सो, लेकिन वो झूठ कौन सा जिससे भाव भाव की कमाई बर्बाद हो जाए, इबादत मिट जाए, वो झूठ ये है दीनदारों के जिसने ईमान की बैत की है और फिर वो बैत तोड़ दे रहे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। ईमान की बैत की है और उसका हुक्म नहीं मानना यह भी झूठ है, इसलिए हमारे ईमान में खलल पैदा होता है और उसका अंजाम यह है कि हमारी जिंदगियों के अंदर तकलीफें पैदा होती है। मालदार बनना कोई सक्सेस नहीं है, सक्सेस ये है कि आपके दिल में सुकून होवे, खुशियां होवे, आपके दिल में नूर होवे। आंख बंद करो रात को तकिए पे, एक दो तीन चार दस होए तो आप सो जाओ, ऐसी जिंदगी चाहो। इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, दो घंटे हो गए नींद नहीं आती, हाँ नींद क्यों आ गई, दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, तरह तरह के बद ख्याल पैदा होते हैं, खौफ पैदा होता है, अपनी जबान को काबू में रखो। आज की मेरी वाइस जो है वो एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर है कि जो इमाम हमेशा लगभग हर फरमान के अंदर फरमाते रहते हैं, अपनी जबान को काबू में रखो। फिर कहते हैं कि जबान ऐसा अजू है कि ये चाहे तो दोजख में ले जाए, चाहे तो जन्नत में ले जाए। जी बिंदी जनार जो बांधे जिसने जबान को बांध लिया, इस अदरिन कहते हैं कि वो नजात में आ गया, क्योंकि यही जबान है जो शर पैदा करती है और खैर पैदा करती है। नूरी जबान जो है उसमें से नूर निकलता है और शर वाली जबान में से गंदी चीजें निकलती हैं। ये तमाम चीजें हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होती हैं। छोटी उम्र से बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ। ये जो गाली गलौज जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये उन लोगों का काम है कि जिन्होंने मजहब को जाना नहीं और वो रजील है। जबान जिस जबान से अल्लाह कहा जाए, जिस जबान से रहमान कहा जाए या अली कहा जाए या मोहम्मद कहा जाए, उस जबान में से गंदी चीज निकले, ये किस तरह से कबूल हो सकता है। जबान खुदा ने दी है उसकी तारीफ करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। ऐसी जबान हो गए कि सामने वाला कितना ही गुस्से में हो गए, जबान उसको ठंडा कर दे। और यही जबान किसी को भड़का देती है तो दुश्मन बना देती है। और ये जबान जो है ये शर्म के अंदर आती है कि जो अच्छा आदमी है वो अपनी जबान से गंदी चीज निकालने में शर्मिंदा होता है, शर्म करता है, नहीं कहता। इस तरह ये रूहानी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, इससे हमारी रूहानियत को ताकत मिलती है और इससे हमारी रूहानियत को आसानी मिलती है। मैं आपको सच कहता हूं हमारे मौलाना हाजर इमाम की मैं अपनी इस जमात के अंदर एहसान मंदी और शुक्रगुजारी करता हूं कि मैंने 123 मुल्क देखे हैं, दुनिया में खूब घूमा हूं, बहुत कुछ देखा है। लेकिन ऐ मोमिनों, मैंने ये देखा है कि जो लोग रूहानी लोग हैं वो लालचु नहीं है, हरीस नहीं है, लेकिन खुशी है, दिल में सुकून है, खुशियां हैं, सीधी सादी जिंदगियां हैं, मोटरे नहीं, बंगले नहीं, लेकिन तंदुरुस्त हैं। मालदार लोगों में बीमारियां ज्यादा हैं और खास तौर पर मेंटल बीमारियां। मजहब हमारा हमें बहुत अच्छी चीजें देता है, खुशियां देता है, नियामतें देता है, घर में इत्तेफाक को मोहब्बत देता है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है, इज्जत आबरू देता है। अगरचे पैसा नहीं है तो ना सही, लेकिन कोई उंगली उठा के कह नहीं सकता कि ये आदमी मेरे पैसे खा गया। और हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि उधार लेते हैं फिर देते नहीं। ये वो चीज आयुष में वादे में, वादा करो तो पूरा करो, किसी से उधार मत लो, और अगर लिया है तो भूखे रह के वो पैसे अदा करो। किसी का माल खाना हमारी रूहानियत को नुकसान देता है। अमाल हमारे अच्छे होने चाहिए, पाक होने चाहिए, ताकि हमारे दिल के अंदर इमाम बैठ सके, इमाम का नूर नजर आए, खुशियां और बरकतें मिले, घर में मियां बीवी के झगड़े ना होए, बच्चे मां बाप की इज्जत करें, भाई भाई में मोहब्बत होए, एक दूसरे के काम आने, एक दूसरे के दुख में मदद करें, ये सब चीजें हमारे मजहब की मोती हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, ईमान से भले रहो, मौला आपकी भलाई आपको जरूर करो, मौला हाजिर ईमान आपकी बीमारियां दवा करे, आसमानी जमीने बलाएं दूर करे, खुशी बरकतों से आपका घर जिंदगी ना भरी रखे, आपके रोजी रिजक में मौला कभी भी तकलीफ पैदा ना आपके घर में बरकतें हैं, आपके घर में नियामत होते हैं, आपके घर में आपकी फैमिली में आपकी जमात में जीतो दुनिया की तमाम बरकतें नियमतें खुशियां सुखियां आबाद करें।
Thank you.